नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने श्री मोदी का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को 2 गुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
Every nation has a mission.
प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
So diversity has to be celebrated.
श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार प्रसारित करते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल पहुंचा चुका है। इस बीच भारत के 11 सदस्यीय तकनीकी दल ने कल नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
चिकित्सा कर्मियों और सुरंग इंजीनियरों का यह दल शुक्रवार को काठमांडू पहुंचा था। कल वे नुवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे, जहां उन्होंने एक पनबिजली परियोजना से जुड़ी सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के प्रयासों में सहायता की। चिली में और लांगटांग क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण पूरा करने के बाद भारतीय दल ने सुरंग क्षेत्र के आसपास बचाव कार्य शुरू किया। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस कर्मियों का यह 82 सदस्यीय संयुक्त सुरक्षा दल कल रात से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। नेपाल के सुरक्षा बलों ने अब तक विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 श्रमिकों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है। विश्व दर्पण के लिए मीनाक्षी।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। ये कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच बैंक मिस्र की UAE शाखाओं ने करीब $1.80 करोड़ के ऐसे लेन देन किए जो ईरानी गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ी 103 कंपनियों से संबंधित थे। UAE केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक की शाखाएं देश के कानूनों और नियमों के अधीन है। बैंक ने स्पष्ट किया कि जाँच के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। बैंक मिस्र ने कहा है कि अमरीकी कार्रवाई केवल UAE स्थित उसकी शाखा तक सीमित है। इसका असर मिस्र और अन्य देशों में बैंक के कामकाज पर नहीं होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान विभाग ने कहा है कि अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के साथ काम कर रहे भारतीय शांति सैनिक वहां विस्थापित हुए लोगों की सहायता करना जारी रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि UNISSA के साथ भारतीय शांति सैनिक अबेई में विस्थापित लोगों की सहायता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभा रहे हैं। इस मिशन की मदद में जरूरी बुनियादी सेवाएं, शिक्षा से जुड़ी पहल और समुदाय के साथ जुड़ाव शामिल है। अबेई इलाका सूडान और दक्षिण सूडान के बीच स्थित है और इसकी देखरेख UNISFA करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बताया कि भारत ने ही सबसे पहले लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं वाली एक यूनिट तैनात की थी, जिससे हजारों लाइबेरियन महिलाएं अपनी राष्ट्रीय पुलिस में शामिल होने के लिए प्रेरित हुईं। विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने लाओस में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से बातचीत की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने राजधानी वियतियाने में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व विद्यार्थियों से भी बातचीत की। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई। 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।